चौथा भाग उर्मिला का विरह वर्णन। नवम सर्ग में कवि ने उर्मिला के विरह व्यथित मानस की संवेदना को उसकी व्यापकता में अभिव्यंजित करने का प्रयास किया है। नारी जीवन में पति की महत्ता विशिष्ट होती है। उर्मिला भी एक अलौकिक नारी न होकर वसुंधरा की एक उपज है, जिसकी दृष्टि सदैव लौकिक प्रेम में है। करुणाजनक परिस्थितियों में उसके अंतर्मन का स्वर आह बनकर उपजा है। यह स्वर उसके चित्त के साथ ही और चेतन मन में समा गया है। तब उसका त्याग एक भारतीय नारी की विवशता सी दिख पड़ती है। युवा नारी का कोमल मन मनोराज्य का जीवन बन जाता है। ऐसे में उहात्मकता स्वाभाविक है। उस पर भी घर की परिस्थितियां, जहां सीता श्री रामचंद्र के साथ यह तर्क देते हुए वन को चली गई कि पत्नी पति के बिना अधूरा है। मांडवी और सुतकीर्ति अपने अपने पतियों के साथ थी, लेकिन उर्मिला को यह सौभाग्य नहीं मिला। मिलन की क्षणिक स्मृतियां विरह बनकर सालने लगी। उस पर भी 14 वर्ष की अवधि एक नव यौवना के लिए बहुत बड़ी अवधि थी। इस वेदना की अग्नि ने उर्मिला का प्रेम ज्वलंत हो उठा। इसी नारी ने भवभूत के हृदय में सीता का रूप धारण किया, कालिदास के हृदय में शकुंतला का रूप धारण किया, सूरदास के हृदय में राधा तथा जायसी के हृदय में नागमती का रूप धारण किया। इसी बात गुप्त जी के हृदय में विरहणी उर्मिला बन गई। कवि की पूर्ण सहानुभूति उर्मिला को मिली है। डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में विरह प्रेम का तप्त स्वर है। वेदना की अग्नि में तप कर प्रेम की मलिनता गल जाती है और जो कुछ शेष रह जाता है वह एकांत शुद्ध और निर्मल होता है। विरह में मिलन से अधिक गांभीर्य और स्थिरता होती है और प्रतीक्षा की अथवा अतृप्ति की उत्सुकता के कारण रसानुभूति की मात्रा अधिक रहती है। इसीलिए तो कवि समाज में भी प्रलंब का मान अधिक रहता है। वह प्रेम के अश्रुमय स्वरूप पर अधिक रिझा है। उर्मिला का विरह वैशिष्ट्य। नवम सर्ग में उर्मिला विभिन्न ऋतुओं में किस प्रकार व्यथित होती है और किस प्रकार विक्षिप्त होकर उन्माद की अवस्था को पहुंच जाती है आदि का वर्णन विस्तार से हुआ है। उर्मिला के विरह वर्णन की विशेषताओं को निम्न शीर्षकों में रख सकते हैं। पहला, प्रेम की अनन्यता। नवम सर्ग के प्रारंभ से ही उर्मिला के उन्माद अवस्था का चित्रण है। अनवरत विरह की उत्पीड़न को सहते सहते वह अवधि को भूल बैठी है। वह कभी प्रियतम को बुलाती है तो होश आने पर उनकी साधना भंग न हो जाए जाने को कहती है। सूल अवधि सुधप्रिय से कहती जगती हुई कभी आओ, किंतु कभी सोती तो उठती वह चौंक बोल कर जाओ। भावनात्मक दुख की साया सदैव मानस पटल पर छाई रहती है। ऐसे में सांसारिक सुखों से व्यक्ति उदासीन हो जाता है। उर्मिला अपने प्रिय को अनन्य भाव से मानस में बैठा कर उसके विरह में जल जल कर आरती बनी हुई है। मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप, जलती सी उस विरह में बनी आरती आप। आँखों में प्रिय मूर्ति थी भूले थे सब भोग, हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग। उसने सभी सुख भोग भुला दिए थे, आठों पहर 64 घड़ी दिन रात प्रिय के स्मृति में निमग्न रहने से उर्मिला ने अपना आत्मशुद्ध भी खो दिया था। 8 पहर 64 घड़ी स्वामी का ही ध्यान, छूट गया पीछे स्वयं उससे आत्मज्ञान। दूसरा, पर दुख का तरता। विरह में विदग्ध उर्मिला का हृदय सरल हो गया है। वह नहीं चाहती कि मेरी तरह यह कष्ट कोई और भी भोगे, इसलिए जितने भी दुखी विरही हैं उसके साथ उसकी पूरी सहानुभूति है। सखी सेवा सम दुखनी को अपने पास बुलाने को कहती है, क्योंकि उनके पास होने से ही उसका कष्ट कम हो सकता है। प्रेषित पतिकाएँ हों जितनी भी सखी, उन्हें निमंत्रण दिया। सम दुखनी मिले तो दुख बटे, जा प्रणय पुरस्सर ले आ। सुख दे सकते हैं तो दुखी जब ही मुझे, उन्हें यदि भेंटूं। कोई नहीं यहाँ क्या जिसका, कोई अभाव मैं भी भेंटूं। इतनी बड़ी अयोध्या में उसे कोई भी अपने समान दुखिनी नहीं दिखाई देती। ऐसी स्थिति में समय को काटने के लिए वह चित्र रचना में लग जाती है, पर पक्षियों ने भी अपना एकाकार उर्मिला के जीवन से कर रखा है। तोता उसे उदास देखकर कहता है, हाय रूठो न रानी। उर्मिला ने जब तोते से पूछा, कह बिहग, कहाँ हैं आज आचार्य तेरे, तब तोता अपनी बोली में उत्तर देता, मृगया में। इस उत्तर को सुनकर उर्मिला का कोमल हृदय विह्वल हो जाता। सचमुच मृगया में तो अहेरी नए वे, या हत हरिणी क्यों छोड़ ही गए वे। वियोग एवं दुख की दशा में आत्मीयता की भावना स्वतः बढ़ जाती है। यह नैसर्गिक नियम है कि सहानुभूति प्रदान करना भी आवश्यक है। वैसे भी ममत्व मिलते ही दुखी हृदय अनायास ही उमड़ उठता है। तभी उर्मिला का स्नेह अपने समीप रहने वाले सभी प्राणियों पर बिखर रहा है। कोक शोक मत कर हे तात, कोकी कष्ट में हूँ मैं, भी तो सुनू तेरी बात। उर्मिला नहीं चाहती कि प्रकृति के साथ भी कोई काट छाट करे, उसके उन्मत्त वृद्धि में कोई बाधक बने। मलिनों को वह उन्हें केवल सींचने का अधिकार देती है, कर्तरी उठाने का नहीं। सींचे ही बस मालिने, कलश ले कोई न ले कर्तरी। साखी फूल फले यथेक्ष बढ़के, फैले लताएं हरी। क्रीड़ा कानन शैल यंत्र जल से संसिक्त होता रहे, मेरे जीवन का चलो सखी वही सोता भिगोता रहे। तीसरा, प्रकृति के साथ अनन्यता। उर्मिला को प्रारंभिक जीवन में सारी सृष्टि एक ही आत्मा का प्रसार प्रतीत हो रही थी। प्रत्येक पत्ता रहस्यपूर्ण और हृदय की गति से युक्त अर्थात सजीव होता था। तृण तृण को नभ सींच रहा था, बूंद बूंद रस देकर बढ़ा रहा था सुख की नौका, समय समीरण खेकर। बजा रहे थे द्विज दल बल से शुभ भावों की भेरी, जीवन के पहले प्रभात में आंखें खुली जब मेरी। उर्मिला कहती है कि जीवन के प्रथम प्रभात में जब मैंने आंखें खोल कर देखा तो हर्षित थी, किंतु अब न जाने वह हर्ष कहाँ चला गया। मैं उस कोयल के सदृश हो गई हूँ जो कभी प्रसन्न होकर कूकती है, किंतु आज प्रिय विरहा के कारण आह भर रही है। मुझे प्रथम सूर्योदय एवं सूर्यास्त की लालिमा आनंददायिनी प्रतीत होती है, किंतु आज ऐसी प्रतीत होती है मानो वह क्रोध दिखा रही हो। वीरा से उबल कर नदियों की धारा सूख गई है, अर्थात प्रकृति के सारे उपादान उल्टे हो गए हैं। यही स्थिति सूरदास के गोपियों के साथ भी है। विरह की दशा में सुखद प्रकृति दुखद बन जाती है। उर्मिला कहती है, वह कोयल जो कूक रही थी आज हूँक भरती है, पूर्व और पश्चिम कोई लाली रोष वृष्टि करती है। लेता है निःश्वास समीरण सुरभि धूल भरती धरती है, उबल सूखती है जलधारा यह धरती मरती है। पत्र पुष्प सब बिखर रहे हैं, कुशल न मेरी तेरी, जीवन के पहले प्रभात में आंख खुली जब मेरी। चौथा, विरह के विविध दशाओं का वर्णन। विरह में काम भावनाएं उद्दीप्त हो जाती हैं। काम की विविध दशाएं विरहणी को अपने प्रिय के विरह में जलाती हैं। ये काम दशाएं शास्त्रों के अनुसार 11 हैं। अभिलाष, चिंता, उद्वेग, उन्माद, स्मरण, गुण कथन, प्रलाप, व्याधि, जड़ता और मरण, ये सभी दशाएं उर्मिला के विरह में दिखाई पड़ती हैं। अभिलाष, उर्मिला की अभिलाषा है कि वह अपना जीवन प्रिय के चरणों में त्याग दे। पिउला खाऊला सखी पहन लूला सब करूं, जीऊं मैं जैसे हूं या अवधि का आरवण करूं। कहे जो मानसो किस विध बता दूं, बता धीरज धरूं, अरे कैसे भी तो पकड़ प्रिय के वे पद मरूं। चिंता, उर्मिला प्रीतम से मिलने की चिंता में घुली जा रही है। 14 वर्ष की अवधि विकट है, वह प्राणों से टक्कर ले रही है। 14 चक्कर खाएगी जब यह भूमि अभंग, घूमेंगे इस ओर तब प्रियतम प्रभु के संग। प्रियतम प्रभु के संग आएंगे तब हे सजनी, अब दिन पर दिन गिनो और रजनी पर रजनी। उद्वेग, उर्मिला उद्वेग में अपने मन को रोक लेती है लेकिन आंसुओं को नहीं रोक पाती। अरे एक मन रोक थाम तुझे मैंने लिया, दो नैनों ने शोक भरम खो दिया रो दिया। हे मानस के मोती ढलक चले तुम कहाँ बिना कुछ जाने, प्रिय है दूर गहन में पथ में कौन तुम्हें जो पहचाने। उन्माद, उर्मिला की उन्माद की अवस्था में देहाभास भी नहीं रह गया है। उसे कभी लगता है कि प्रिय वन से लौट आए हैं। विचारती हूँ सखी मैं कभी कभी, अरण्य से हैं प्रिय लौट आते, छिपे छिपे आकर देखते सभी, कभी स्वयं भी कुछ दिख जाते हैं। स्मरण, उर्मिला पूर्व मिलन की बातों का स्मरण करके विरह तप्त हो रही है। आए सखी द्वार पटी हाथ से हटा के प्रिय, वंचक भी वंचित से कंपित विनोद में, ओढ़ देखो तनिक तुम्ही तो परिधान यह, बोले डाल रोम पट मेरी इस गोद में। क्या हुआ उठी मझट प्रावरण छोड़ के, परिणित हो रहा था पवन प्रतोद में, हर्षित थे तो भी रोम रोम हम दंपति के, कर्षित थे दोनों बाहु बंधन के मोह मोद में। गुण कथन, अपने प्रिय के गुणों का उर्मिला बार बार कथन करती है। अपनी सखी से वह प्रिय के मिलन का गुण कथन करती हुई कहती है कि प्रिय ने किस तरह उसके कर्ण मूलों को चूम कर लाल कर दिया। आए एक बार प्रिय बोले एक बात कहूँ, विषय परंतु गोपनीय सुनो कान में, मैंने कहा कौन यहाँ, बोले प्रिय चित्र तो है, सुनते हैं वे राजनीति के विधान में। लाल किए कर्ण मूल होठों से उन्होंने कहा, क्या कहूँ सगदगद हूँ मैं भी अब छदान में, कहते नहीं करते हैं कति सजनी में, खीज के भी रीझ उठी उस मुस्कान में। प्रलाप, विरहणी उर्मिला उन्माद की अवस्था में प्रिय के काल्पनिक प्रलाप करती है। उन्हें कभी बुलाती है तो कभी वापस चले जाने को कहती है। भूल अवध सुध प्रिय से कहती जगती हुई कभी आओ, किंतु कभी सोती तो उठती वह चौंक बोल कर जाओ। व्याधि, दिन रात विरह में विदग्ध होकर उर्मिला अत्यंत छीड़ हो गई है। एक अनोखी मैं ही क्या दुबली हो गई सखी घर में, देख पद्मनी भी तो आज हुई बाल शेष निज सर में। जड़ता, जब विरह में जीवन जीने की आदत सी हो जाए तो विरह के कारण जीवन में जड़ता आ जाए तो वह व्यथा दयनीय होती है। उर्मिला की भी यही स्थिति है। क्या क्षण क्षण में चौंक रही मैं, सुनती तुझे आज यही मैं, तो सक जीवन न जनाऊं इस क्षणदा को विफल बनाऊं। मरण, विरह में विदग्ध उर्मिला मृत्यु की कामना करती है। कहता है पतंग मन मारे तुम महान मैं लघु, पर प्यार क्या न मरण भी हाथ हमारे। पांचवा, कर्तव्य पथ का भान। उर्मिला विरह में दग्ध होते हुए भी अपने कर्तव्य पथ का ज्ञान रखती है। वह अपने देवर शत्रुघ्न से कृषकों का हाल पूछती है। पूछी थी सुकाल दशा मैंने आज देवर से, कैसी हुई उपज कपास ईख धान की। बोले इस बाल देखी देखने में भूमि पर, दुगनी दया से हुई इंद्र भगवान की। उर्मिला अपने प्रिय के साधना में विघ्न नहीं बनना चाहती, वह निकट रहकर भी दूर रहना चाहती है। छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में, प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। छठवां, दाम्पत्य भाव की प्रबलता। उर्मिला का पति प्रेम भारतीय पवित्रता का प्रेम है, पतिव्रता नारी का प्रेम है। कामदेव की चपलता को वह चुनौती दे डालती है, क्योंकि उसे अपने पति के रूप गुण पर विशेष आस्था और गर्व है। मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला भी योगनी, कुछ तो दया बिसारो। नहीं भोगनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो, बाल बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पथ पर वारो, लो यह मेरी चरण धूल उस रथ के सिर पर धारो। साकेत में उर्मिला के विरह वर्णन चरम सीमा पर पहुंच गया है। प्रेम की कसौटी है विरह, इसलिए उर्मिला तप कर स्वर्ण के समान चमक उठती है। यहाँ तक कि साकेत में स्वयं राम भी उर्मिला की प्रशंसा करते हैं। तूने तो सहधर्मचारिणी के भी ऊपर धर्म स्थापना किया भाग्यशालिनी इस भू पर। वेदना तो जैसे उर्मिला का जीवन ही बन गई है, वही प्रिय की पूर्ण स्मृति का माध्यम बनकर आती है। अब तो प्रिय की स्मृति मात्र है उसके जीवन का आधार है। वेदने तू ही भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह धनी। साकेत में उर्मिला का चरित्र सीता से भी ऊंचा उठ गया है। वहीं साकेत की कथा की केंद्र बिंदु और आधार है। सारा कथानक उसके आंसुओं से गीला है। उर्मिला का विरह उसके गार्हस्थ जीवन से उत्पन्न है। अपने विरह में वह उसी राज चाहर दीवारी के अंदर तड़पती है। डॉक्टर नागेंद्र के शब्दों में, वास्तव में उर्मिला का विरह वर्णन जीवन से बाहर का वस्तु नहीं है, उसका प्रतिफलन नित्य प्रति के गृहस्थ जीवन में ही हुआ है। वह न तो कुलकानी बेचकर योगिनी ही बनकर घर से निकलती है, न उसका उन्माद ही साधारण जीवन से परे कोई प्रलयंकर विधान है। वह तो राजप्रकार परिवार की वियोगिनी को ललना है। डॉक्टर रामनंदन भटनागर साकेत पर आक्षेप करते हुए कहते हैं कि उसे गुप्त जी को इतना नहीं रुलाना चाहिए था। उनके शब्दों में, साहित्य की दृष्टि में साकेत का यह अंश महत्वपूर्ण है, परंतु राम कथा के उदात्त रूप का ध्यान रखते हुए यह नया प्रसंग लांछित ही हुआ है। लक्ष्मण जैसे पति की भार्या के नाते साकेत कि उर्मिला का दिवारात्रि रुदन अत्यंत हास्यास्पद हो गया है। कम से कम उसको उतना विस्तार तो नहीं दिया जाना चाहिए जितना विस्तार साकेत के कवि ने उसे दिया है। इससे रामकथा के उच्च भाव भूमि को धक्का लगा है। उर्मिला काव्य की उपेक्षित अवश्य है, परंतु विशेष ध्येय को सामने रखने के कारण पूर्व के कवि उसके संबंध में मौन है। अपने आदर्श चरित्रों से हटकर वह कहीं और नहीं जाते, परंतु आधुनिक युग में दुखितों और उपेक्षितों के प्रति जो महान सहानुभूति उमड़ कर आई है, वह कर्तव्य अकर्तव्य की बात नहीं दिखती। वह अत्यंत निम्न कोटि की भावुकता से प्रेरित ग्रसित हैं। जहाँ संयम और मौन ही कविता है, वहाँ मुखरता कलाकार की सबसे बड़ी भूल है। रामकथा की घटनाओं का खूब तोड़ मरोड़ कर विचार करने पर दिनकर ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है, पात्र विशेष के चरित्र को चमकाने के लिए घटनाओं में तोड़ मरोड़ करना सतकवि का काम नहीं है, उल्टे इससे तो इतिहास के साथ अन्याय ही होता है। फिर भी काव्य कला एवं भाव प्रधानता की दृष्टि से उर्मिला का विरह वर्णन सर्वोत्कृष्ट है। यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है।